ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்தகிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
आप तैयार हो अपने शरीर को 100% कुर्सी की तरह जड़ है मानने को तैयार है, जबकि आपका शरीर 100% कुर्सी की तरह ही जड़ है। चैतन्य के साथ तादात्म्य होने के कारण आप अपने आप को अपने शरीर को जड़ नहीं मान सकते, लेकिन कोई विचार करने वाला व्यक्ति, तत्व विचार करने वाला व्यक्ति, विवेक करने वाला व्यक्ति जड़ और चैतन्य क्या है, क्या जड़ है क्या चैतन्य है, ये विचार करने वाला व्यक्ति शरीर को कुर्सी की तरह 100% जड़ स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलो। अब भी करते हो विचार करने के समय में, तो अब भी यही कहोगे चैतन्य मैं हूं और शरीर मेरा, तो शरीर तो जड़ है। ऐसे भ्रांति कैसे क्यों हुई भाई, तादात्म्य के चलते। कुर्सी के साथ आपका तादात्म्यता नहीं है, चैतन्य के तादात्म्यता नहीं है, इसीलिए कुर्सी को तो तुम 100% जड़ मानने को तैयार हो, लेकिन शरीर के साथ चैतन्य का ऐसा तादात्म्य बन गया है, अन्यस्मि अन्य धर्मा धर्मी तादात्म्य हो गया है। चैतन्य का धर्म शरीर में और शरीर का धर्म चैतन्य में अन्य अन्य आश्रय होने के कारण इस तरह भ्रांति हो सकती है। तो ये तो कोई समझदार व्यक्ति विचार करेगा तभी उसको दिखेगा कि जड़ता कितनी है और चेतनता कितनी है। पशुता भी है, हालांकि आप अपने आप को पशु मानने को तैयार नहीं हो, हो? बोलो। आप लोग अपने आप को पशु मानने को तैयार हो, पशु मानने को तैयार हो, बोलो। पशु मानते हो कि इंसान मानते हो, है? लेकिन जब विचार करते हैं तुम अपने को भले इंसान मान लो, लेकिन जब तत्व विचार करते हैं तो तुम्हारे में इंसानियता कितनी है और पशुता कितनी है स्पष्ट दिखेगा। अब शैव दर्शन में तो कहा गया है पाशवद्दो ही पशव, पाश से बंधे हुए होने के कारण जीव मात्र पशु है। पाश पंचविधः, आप पांच प्रकार के पाशों से बंधे हैं, और गीता में तो कह दिया है कर्मानुबंधी में मनुष्य लोग। इस संसार में हर मनुष्य उसके द्वारा किए गए कर्म से बांधा हुआ है, तो जो बांधा हुआ हो वो इंसान कैसे हो सकता है, बोलो। इंसान बांधा हुआ होता है, स्वतंत्र को इंसान कहेंगे, बंधे हुए को इंसान कहेंगे, बंधे हुए को तो पशु कहेंगे। इसीलिए तुमने भगवान को पशुपति माना कि नहीं, है? भगवान को पशुपति माना कि नहीं? वह पशुपति है तो पशु कौन है, बोलो। तुम खुद पशु हो कि नहीं, उसको तुमने पशुपति माना है तो तुम खुद पशु हो। तो विचार करने पर सिद्ध होता है कि मुझ में पशुता है, लेकिन विचार नहीं करें तो फिर हम पशु सिद्ध नहीं होते, हम तो अपने आप को इंसान बंधे हुए हैं फिर भी इंसान कहते जा रहे हैं। बंधे हुए हैं फिर भी क्या कह रहे हैं, कहने के लिए अपने आप को इंसान कह रहे हैं और बंधे हुए हैं, इसलिए विचार करने पर अपने आप में पशुता सिद्ध हुआ कि नहीं बोलो। जड़ता पशुता कलंकिता, कलंकी माने जो शास्त्र ने करने से निषेध किया हुआ काम है वह तुम यदि करते हो तो निषिद्ध कर्म करने वालों को कलंकी बोलते हैं। समझ गया कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि चोरी न करो, तुमने चोरी किया तो वो तुम्हारे मथे में कलंक लग गया कि नहीं है? शास्त्र ने कहा कि तुम अभक्षण भक्षण ना करो और तुमने कर ली तो कलंक लगा कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि ये कर्म ना करो फिर भी तुमने कर ली तो यही तो तुम्हारी कलंकता है। और वास्तव में विचार करें तो तुमने इतने गलत काम कर रखी है, तुम निर्दोष कैसे सिद्ध होगे? इतने गलत काम कर रखी है कि तुम निर्दोष तो सिद्ध नहीं हो सकते हो। इसलिए कलंकिता कुटिलचरत्वम, करते कुछ हो, कहते कुछ हो, मन में कुछ और है, यही कुटिलता है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मन्यन्यत, इसी का नाम है कुटिलता। मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो और कर्म कुछ और कर रहे हो, इसी को कुटिलता बोलते हैं। यही दुरात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन में जो है वही वाणी में है और मन और वाणी में जो है वही व्यवहार में है, तो उसी को सरल व्यक्ति कहेंगे, उसी को सीधा व्यक्ति कहेंगे। और मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ है, तो उसको क्या कहेंगे? टेढ़ा व्यक्ति कहेंगे कि नहीं? वो व्यक्ति बड़ा टेढ़ा है, करता कुछ है, बोलता कुछ और है। व्यवहार में भी तो ये कहते हैं ना, उस टेढ़े पने को ही कुटिलचारत्वम। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचारत्वम च नास्ति मयि देव, यदि अस्ति राजमौले। राजमौले संबोधन है, राजाओं का भी महाराज सिरमौर राजमौली, राजमुकुट। अस्ति यदि राजमौले, हे राजमौले, ये संबोधन हो। यदि कदाचित मुझ में जड़ता भी उद हो, पशुता भी हो, कलंकिता भी हो, कुटिलचरता भी हो, तो भी आपके द्वारा तिरस्कार करने योग्य तो नहीं। भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्, आपके आभूषण अने आपके दैनंदिनी के उपयोगी वस्तु के रूप में आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? देखो बड़ा सुंदर भाव है यह, अपने में बहुत से कमजोरियों को बता भी रहे हैं। मुझ में जड़ता है, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि जड़ वस्तु से मैं तादात्म्य कर रहा हूं, इसलिए जड़ता है। फिर भी जिस जड़ वस्तु को आपने बड़े प्रेम से स्वीकार किया है, ऐसा जड़ तो मैं नहीं, और ऐसे महान जड़ से जड़ वस्तु को भी आपने स्वीकार किया, तो फिर केवल मेरा तिरस्कार क्यों करते हो? भगवान शिव ने माला किसकी बनाई? गुलाब की, कमल के? प्रार्थना क्या करते हो? सृगपि निर्करोति परिकर। महिमने स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने क्या कहा? सृग माने माला, स्रगपि कि कौन सी माला, स्रगपि निरकरोटी मनुष्यों की खोपड़ी, मरने के बाद मशान घाट में पड़ी हुई मनुष्यों की जो खोपड़ी है, उन खोपड़ी समूह को भगवान शिव ने माला पहन बनाकर पहनी कि नहीं। अरे अभी तो मैं जिंदा हूं, मरे हुए खोपड़ी को तो तुमने माला बनाकर पहन रखी है, स्वीकार किया है, धारण किया है, अपने आभूषण के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरा तिरस्कार फिर क्यों करते महाराज? मान लो कि मैं जड़ हूं, फिर भी तो उस खोपड़ी जैसा जड़ तो नहीं हूं। बोलो, तुम अपने आप को मरे हुए मनुष्यों की खोपड़ी जैसा जड़ मानने को तैयार हो, जबकि वो जड़ खोपड़ी तुम्हारे खोपड़ी में है कि नहीं, फिर भी अपने आप को चेतन मानते हो कि नहीं? तो ऐसे जड़ को शिव स्वीकार कर सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्यों तिरस्कार करते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि फिर मुझे क्यों तिरस्कार किया? जड़ता। दूसरी बात है, त्रिशूल कैसा है शिव जी के हाथ में? तुम्हारे जैसा चेतना है उसमें? थोड़ा भी चेतनता है? बोलो। ये बात अलग है कि तुम शुद्ध चैतन्य नहीं हो, है ना? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये बात अलग है कि मैं शुद्ध चैतन्य नहीं हूं, मैं जड़ मिश्रित चैतन्य हूं, है ना? लेकिन वो त्रिशूल तो शुद्ध जड़ है, वो खोपड़ी तो शुद्ध जड़ है। अब शुद्ध जड़ त्रिशूल को अपने हाथ का आभूषण बनाकर धारण कर ली, और शुद्ध जड़ खोपड़ी को जब अपने माला बनाकर गंठ में धारण कर ली, तो मुझमें तो उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा चैतन्य है। मुझे भी अपने शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई आभूषण के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते हो महाराज? कहीं पहन लो ना महाराज, मुझे कहीं अपने आभूषणों के कहीं ना कहीं जोड़ लो ना महाराज। आप महिला हो तो नाक में नथनी के रूप में पहन लो, किसे? जब सोने के और हीरा के बिल्कुल जड़ नथनी को नाक में पहन सकते हो, तो उससे तो मैं बहुत ज्यादा चैतन्य हूं महाराज। मुझे कहीं ना कहीं पहन लो, एक कान में लटका लो, हाथ में कहीं अंगूठी बनाकर पहन लो। मैं अपने को कृतार्थ मानूंगा कि शिव ने मुझे स्वीकार किया है। ये परमात्मा कहीं ना कहीं आभूषण के रूप में स्वीकार करो भाई, सर्वथा तिरस्कार तो मत करो। जड़ता पशुता, दूसरी बात है पशु। ये बात अलग है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं। आशा पास जगत दास, महाभारत में श्लोक आता है, आशा पास जगत दास। आशा रूपी पास से जो बंधा हुआ होता है वह जगत का दास होकर जीता है, और निराशी वो आशा रूपी पास में जो बंधा नहीं है वो निराशी है, आशा रहित है, अवनीपति, वो सम्राट हो जाता है। जिस दिन तुमने आशा छोड़ दी उस दिन तुम सम्राट हो जाओगे। आशा दास जगत दास, निराशी अवनीपति। और दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु का वाक्य है ये, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये वाक्य किसका है? दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु का वाक्य है, हैं? तुमको ज्ञान चाहिए तो वेश्या से भी मिल सकता है महाराज, तुम उसके योग्य तो बनो, कम से कम दत्तात्रेय तद योग्य थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ली। आशा दास जगत दास निराशी अवनीपति, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम सब पशु इसलिए हैं क्योंकि हम आशा के बंधन से बंधे हुए हैं, निराशी नहीं है। लेकिन मैं उस वृषभ जैसा पशु तो नहीं हूं। भगवान शिवा का वाहन क्या है? वृषभ है, नंदी है। अरे मैं तो दो टांग वाला इंसान हूं, वो तो चार टांग वाला तिर्यक प्राणी है। मैं तिर्यक तो नहीं हूं, कम से कम नंदी तिर्यक प्राणी है। भगवान शिवा ने दो पशुओं को धारण किया है, एक तो वाहन के रूप में नंदी को धारण किया है, अपनाया है, दूसरा मृगधारम, दो उंगलियों के बीच में एक मृग को धारण किया है। मृग चंचल मन का प्रतीक है, प्राणियों में सबसे ज्यादा चंचल प्राणी मृग है, और यह सिंबॉलिक है, मन अति चंचल है, और भगवान शिव ने ये दो उंगलियों के बीच में उस मृग को धारण किया है। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का चार भुजा देख लो, एक हाथ में मृग है, मृग दंतिक त्वाकृत सुंदराम मृगधरम, मृगधरम भी आता है ना। अरे भाई वो मृग जैसा पशु तो नहीं ना हूं मैं, नंदी जैसा पशु तो मैं नहीं हूं। ये बात अलग है कि मैं पूर्ण इंसान नहीं हूं, पशुता है, पांच प्रकार के पशुओं से मैं बंधा हूं। अब पशु ही सही, फिर भी जब आप नंदी को वाहन के रूप में स्वीकार कर सकते हो, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो महाराज, मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, शिव हे चंद्रमौले, मुझे वैकल्पिक वाहन के रूप में रिजर्व में स्वीकार करो। शब्दार्थ समझ गए ना, वैकल्पिक वाहन, अल्टरनेट। अरे कदाचित वह नंदी जिस पर आप हमेशा सवारी करते हो कोई दिन बीमार हो गया तो मैं काम में आऊंगा, स्वीकार कर लो महाराज, मेरी सवारी कर लेना है? मुझे उतने लायक तो समझकर स्वीकार करो महाराज, मेरा सर्वथा तिरस्कार मत करो। जड़ता पशुता कलंकिता, तीसरी बात है कलंकी। हालांकि मुझ में वो कलंक नहीं है मेरे दृष्टि से, लेकिन आपके दृष्टि से जब आप देखते हैं कि मैं कलंकी हूं, फिर भी तिरस्कार करने योग्य तो नहीं हूं। चंद्रमा जैसा गुरुपत्नी गामी कलंकी को तो अपने सिर में धारण किया है, मैं ऐसा गुरुपत्नी गामी तो नहीं ना हूं है? बोलो, इतना तो आप गारंटी कहोगे कि नहीं, छाती में हाथ रखकर है कहोगे कि नहीं मैं गुरुपत्नी गामी हूं? आप गुरुपत्नी गामी हैं? बोलो, चंद्रमा गुरुपत्नी गामी है कि नहीं? बोलो, प्रमाण है कि नहीं? और ऐसे कलंकी को जो देवताओं ने भी जिसकी निंदा की, शास्त्र ने निंदा की, और जिसके चलते बृहस्पति ने उसको राजयक्ष्म रोग से ग्रसित कर दिया, क्षय रोग से ग्रसित कर दिया, क्षय रोग राजयक्ष्म टीवी, चंद्रमा को टीवी हो गया है, जा आज के बाद तू क्षय रोग से ग्रसित हो जा। तो परिणाम क्या हुआ है? पूर्णिमा में इतना सुंदर दिखने वाला चंद्रमा प्रतिपदा से घटना शुरू होता है कि नहीं, बोलो? पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से घटना शुरू होता है कि नहीं? अब अमावस्या आते आते तो खत्म। फिर जिस जैसे तैसे वह बेचारा प्राण लेकर अमावस्या के प्रतिपदा से थोड़ा बढ़ने शुरू करता है, पातंजल का चवन परस खाना शुरू किया होगा, अमृत पाक खाना शुरू किया होगा, स्विच ऑफ करो ना मां। तो जैसे तैसे बढ़ता है तो फिर पूर्णिमा तक तो कुछ तंदुरुस्त होता है, ठीक ठाक होता है, फिर रोग लग जाता है, फिर क्षय होने लगता है। क्यों महाराज? उसको तो श्राप लगा है ना। श्राप क्यों दिया? कलंकी। जिसको श्रद्धा से गुरु पत्नी मां की तरह पूजना चाहिए और उसी को उसने पत्नी की तरह भोगने शुरू किया, और ऐसे कलंकी को आपने मस्तक में धारण किया है, तो महाराज ऐसा चंद्रमा जैसा कलंकी तो मैं नहीं हूं। उसको मस्तक में धारण किया है तो मुझे कई चरणों में तो आश्रय दो, बोलो? शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ऐसे कलंकी को आप मस्तक में सिरमौर बनाकर धारण कर सकते हो तो मुझे कहीं चरण की जूती तो बना लो महाराज। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम टेढ़ा चलना, मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ और, व्यवहार में इस प्रकार का भिन्नता लाना, यही जीवन की कुटिल चरता है, टेढ़ा चाल है, यही टेढ़ी चाल है आपकी। इस हिसाब से आप सर्प हैं कि नहीं, बोलो? हैं? सर्प सीधा चलता है कभी? सर्प हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सर्प की चाल कुटिल है और आपके जीवन का चाल भी सर्प के सरा है कि नहीं, सर्प की तरह ही है ना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। पति कहता है कि सत्संग में मत जाना, और तुम सत्संग में गए बिना नहीं रह पाते हो, तो सत्संग में आ गए। पति ने पूछा कहां गई थी? बोले सब्जी लेने गई थी। कुटिल चरो हो गया कि नहीं, सर्प हो गया कि नहीं, तुम बोलो, बोलो ना। है ये तुम्हारी कुटिल चरता है कि नहीं, सर्प है कि नहीं? जीवन में कई बार ऐसा होता है भाई, करना ही पड़ता है, और आप लोग कुटिल चर करते ही हो, आप सर्प ही हो। पति से घर खर्चा के लिए पैसा लेते हो और सभी पैसा घर खर्चा में न लगाकर उसमें से कुछ बचाकर साधु ब्राह्मण को देते हो, कुटिल चर है कि नहीं, बोलो? ये तुम्हारी सर्पपना है कि नहीं? पति कहा कि इतना, इतने रुपया तुमने पहले लिया था, उसका हिसाब कहां गया? तो तुम कहोगे अरे भाई इतनी महंगी सब्जी है, इतना महंगा तेल है, इतनी महंगी दूध है, ये घर चलाना होता है, इतने पैसे से क्या होता है? फिर भी ये कहो कि मैं कैसे घर चला रही हूं, उसमें तुम ये कहोगे दूध महंगा है, सब्जी महंगी है, ये सब कहते हुए साधु संतों को भी देना जरूरी है, कहोगे? बोलो, उस वाक्य को तो तुम छुपाए रखोगी उसको, जबकि देती जरूर हो, तुम कहती नहीं हो ना। यही तो कुटिल चरता है। क्या ये ईमानदारी है, सीधी चरण है तुम्हारा? मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत, यही कुटिल चरता। फिर भी महाराज मैं उस जहर से भरे हुए सर्प की तरह तो नहीं, ये बात अलग है कि मेरे में अमृत नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज सर्प जैसा जहर भरा हुआ तो नहीं हूं। ये बात अलग है कि मेरा जीवन सीधा नहीं है, सरल नहीं है, व्यवहार में कई बार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर भी सर्प जैसा तो नहीं हूं। और ऐसे सर्प को भी आपने जब धारण कर लिया है, सिर में जटा बांधने के लिए उसका प्रयोग किया, गले में माला बना के पहन ली, हाथ में बाजूबंद के रूप में रख ली, कमर में दंती तक बाघ के चमड़ी को, हाथी के चमड़े को बांधने के लिए बेल्ट के रूप में प्रयोग कर ली, उस सर्प का तो अपने जीवन ही कृतार्थ कर दिया महाराज, लेकिन आज तक मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो महाराज? कहीं ना कहीं कुछ तो प्रयोग करो मुझे।